नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनवर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूके एमटीओ ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहे ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।